بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتینت کڑے اور آپس میں اتینت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انوگرہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، آج رویوار ہے، خرداد کی پہلی اور مئی کی 22 تاریخ ہے۔ ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے مبارک مہینے شابان کی 20 تاریخ ہے۔ آج کی ہماری سبھا کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اس کے بعد آپ کی سیوا میں کاریکرم انمول باتیں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد راجنیتک چرچا پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار، اور انت میں آپ کی سیوا میں کاریکرم آج کل پرسارت کیا جائے گا۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستوں، کاریکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹریہ اور انتراشٹریہ سماچار مریم مہردادی اور روش زیدی سے سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سوموار کو ایک اچھ استریہ پرتینیدھی منڈل کے ساتھ عمان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ پرتبندھوں کو لے کر جنرل سلامی کا بیان، ایران نے سبھی رکاوٹوں کے بعد بھی الیکھنیہ وکاس کیا۔ یوکرین نے یدھ ورام کی پیشکش ٹھکرائی۔ داووس میں وشو آرتھک منچ کا شکھر سمیلن شروع ہوا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی عمان نریش ہیثم بن طارق آل سعید کے ادھیکارک نمنترن پر سوموار کو اس دیش کا دورہ کریں گے۔ ایران کے راشٹرپتی کوٹنائک پریاسوں اور آرتھک، راجنیتک اور سانسکرتک سمبندھوں کو ورستت کرنے کے لیے عمان نریش ہیثم بن طارق آل سعید کے سرکاری نمنترن پر 23 مئی سوموار کو مسقط کے لیے روانہ ہوں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمان نریش کے محل میں ایک سرکاری ملاقات، دیپکشیہ سمبندھوں میں وستار کے معاملوں کی سمیکشا، سہیوگ کے کئی دستاویزوں اور نوٹس پر ہستاکشر، عمان میں رہنے والے ایرانیوں سے ملاقات اور عمانی ویپاریوں اور ارتھ شاستریوں سے ملاقات راشٹرپتی کے دورے کے مہتوپورن کاریکرم ہیں۔ بیورو کے انوسار 50 ایرانی ارتھ شاستریوں اور ویپاریوں نے پچھلے سپتاہ دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویپارک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کی دشا میں قدم بڑھانے کے لیے عمان کا دورہ کیا تھا۔ عمان میں تعینات ایران کے راجدوت علی نجفی نے شنیوار کو کہا تھا کہ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کا سوموار کا دورہ دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویپارک سمبندھوں کو مضبوط کرنے میں سہایک ثابت ہوگا۔ انہوں نے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کے سوموار کے عمان دورے کے کاریکرموں اور لکشوں کا بیورہ دیتے ہوئے ایران اور عمان کے بیچ سمبندھوں کو وبھن شیتروں میں بہترین قرار دیا और कहा कि ये संबंध अच्छे पड़ोस और संयुक्त ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पड़ोसियों के संबंधों के सिद्धांतों पर आधारित है। हमें दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई समस्या या रुकावट नहीं है।
ईरान की इस्लामिक क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारान के कमांडर ने अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए अभूतपूर्व प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ईरान ने सभी रुकावटों और कठिनाइयों भरे समय में भी उल्लेखनीय विकास किया है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामी क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारान के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इस्लामी क्रांति की महान सफलता के बाद अब तक दुश्मन लगातार इस ताक में बैठे हैं कि वो किसी न किसी बहाने से ईरान की शांति व्यवस्था को खत्म कर दें या उसको इतना भारी नुकसान पहुंचा दें ताकि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सकें। जनरल सलामी ने कहा कि दुश्मनों की सभी साजिशों के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र के जियाले बेटों की सूझबूझ और बहादुरी दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देती है। जनरल सलामी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बेगुनाह इंसानों की लाशों के ढेर पर बने महलों में रहने वाले और उनके साथ ही ईरानी राष्ट्र पर हमले की साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईआरजीसी पूरी सतर्कता के साथ अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं और समय समय पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रहती है।
यमनी सैन्य सूत्र ने कहा है कि हमलावर सऊदी गठबंधन द्वारा निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक यमन में संघर्ष विराम 2 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन हमलावर सऊदी गठबंधन दैनिक आधार पर इसका उल्लंघन करता रहता है। यमनी सैन्य सूत्र ने शनिवार रात अल मसीरा टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हमलावर सऊदी गठबंधन और उसके भाड़े के एजेंटों ने पिछले 24 घंटों में 134 बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। यमनी सूत्र के अनुसार हमलावर सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों और ड्रोनों ने गोलीबारी के दौरान मारिब, ताइज, हज्जा, अलजौफ, सादा, सना और बैजा प्रांतों के हवाई क्षेत्रों में टोही उड़ाने भरी और रॉकेट फायर किए। हमलावर सऊदी गठबंधन और उसके भाड़े के सैनिकों ने हज्जा, मारिब, सादा, अल जलिया और अल बैजा प्रांतों के कई आवासीय क्षेत्रों पर बमबारी की। यमन के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत हैंस ग्रेनबर्ग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यमन में संघर्ष विराम का उल्लंघन सऊदी अरब की ओर से लगातार जारी है।
मीडिया सूत्रों का कहना है कि नैनवा प्रांत के वाशिका इलाके में तुर्की के अवैध सैन्य अड्डे जलिकान पर ड्रोन हमला हुआ है। मीडिया सूत्रों का कहना है कि 6 ड्रोन विमानों ने मुसिल के वाशिका इलाके में तुर्की के अवैध सैन्य अड्डे जलिकान पर हमला किया। साबरीन न्यूज ने बताया कि ड्रोन हमलों में हताहतों की संख्या के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। हालांकि ड्रोन के हमले के बाद हवा में धुएं के बादल छा गए। कुछ सूत्रों का कहना है कि हमले में 2 तुर्की सैनिक और 1 तुर्की सैन्य ठेकेदार मारे गए हैं। इराक में तुर्की के सैन्य ठिकानों पर पहले भी कई बार रॉकेट दागे जा चुके हैं। विदेशी सैनिकों के अवैध उपस्थिति से नाराज इराकी प्रतिरोधकर्ता गुटों ने अब अमरीकी आतंकवादियों के साथ साथ तुर्की सैनिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
विश्व आर्थिक मंच की 2021 की वार्षिक बैठक शारीरिक रूप से नहीं हो पाई थी, जबकि 2022 की बैठक को कोविड महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा था। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि वार्षिक बैठक 2022 शिखर सम्मेलन की थीम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित होगी। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद स्विस स्की रिजॉर्ट शहर दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत सहित कई वैश्विक नेताओं के शामिल होने और यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। दुनिया भर के अमीरों और ताकतवरों का हाई प्रोफाइल वार्षिक सम्मेलन रविवार शाम को एक स्वागत समारोह के साथ शुरू हुआ, जो गुरुवार 26 मई तक जारी रहेगा। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वान डेर लेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स समेत अन्य विश्व नेता वक्ताओं में शामिल हैं।
यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम की पेशकश को खारिज कर दिया है। साथ ही कीव ने दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के लिए भी शर्त रख दी है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल ओव पोडोलिक ने रूस के साथ युद्ध विराम की यूरोप की पेशकश को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि युद्ध विराम रूस के हित में है, क्योंकि रूसी सैनिक कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं और जब तक रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा से बाहर नहीं जाते हैं तब तक बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। मिखाइल ओव ने कहा कि रूस को इस युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने दावा किया कि रूस को रियायतें देने से उल्टे प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में एक छोटे से ब्रेक के बाद मॉस्को अधिक तीव्रता के साथ हमले शुरू करेगा।
रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा है कि 11 और यूक्रेनी ड्रोन रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा है कि रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने खरसून क्षेत्र में 11 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। कोनाशेनकोव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान के आरंभ के बाद से अब तक लगभग 1000 यूक्रेनी ड्रोन विमानों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी रूस के विशेष सैन्य ऑपरेशन में यूक्रेनी सेना के अब तक कुल 174 लड़ाकू विमान, 125 सैन्य हेलीकॉप्टर, 977 ड्रोन, 317 विमान भेदी मिसाइल प्रणाली, 198 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन, 408 रॉकेट लॉन्चरों को रूसी सेना ने नष्ट किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध के आरंभ से अब तक रूसी मिसाइलों और तोपखाने इकाइयों ने यूक्रेनी सेना के 41 कमांड सेंटरों को पूरी तरह नष्ट किया है। कोनाशेनकोव ने अपने बयान के अंत में कहा कि हालिया दिनों में रूसी लड़ाकू विमानों ने 3 यूक्रेनी चौकियों और 26 कमांड पोस्ट क्षेत्रों और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया है, जिसमें 210 से अधिक यूक्रेनी राष्ट्रवादी मारे गए हैं।
यूक्रेन के अजोव स्थल कारखाने को पूरी तरह से रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक रूसी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में अजोव स्थल कारखाने पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। रूस के सैन्य प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों सहित 2400 से अधिक लड़ाकों ने अपने हथियार डालकर रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। ये लोग लगभग एक महीने से फैक्ट्री में रूसी सेना की घेराबंदी में थे। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में ज़ायोनी शासन के खात्मे और इच्छाओं पर काबू पाने के बारे में चर्चा करेंगे। कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनेई ने क्षेत्र की अरब सरकारों को अमरीका का मोहरा बताया है। आपने ज़ायोनी शासन को इस क्षेत्र के लिए हानिकारक और खतरनाक बताया। इसी प्रकार से उन्होंने इसकी जड़ों को खत्म होने पर भी बल दिया है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ज़ायोनी शासन की क्षेत्र में उपस्थिति और संबंधों को सामान्य बनाने की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी नीतियों में से एक है। क्षेत्र की कुछ अरब सरकारें अमेरिका के मोहरे की भूमिका अदा कर रही हैं और इस बार आवश्यक भूमिका तैयार करके आर्थिक संपर्क या इन जैसे रास्तों से ये काम कर रहे हैं। ये कोशिशें पूरी तरह से बेकार और परिणामहीन ही रही हैं। ज़ायोनी शासन इस क्षेत्र के लिए हानिकारक और बहुत ही खतरनाक है। निश्चित रूप से इसकी जड़ें सूखने वाली हैं। ये शासन उन लोगों के लिए बेइज्जती और अपमान का कारण बनेगा जिन्होंने इस साम्राज्यवादी शासन की नीतियों की सेवाओं के लिए अपनी क्षमताओं व संभावनाओं को पूरी तरह से लगा दिया है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि कुछ लोग इस बुरे बर्ताव के लिए औचित्य पेश करते हैं। ऐसे लोग दलीलें देते हैं कि ज़ायोनी शासन क्षेत्र की एक वास्तविकता है। उनको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस हानिकारक और नुकसानदेह वास्तविकता से संघर्ष करते हुए उसे नष्ट किया जा सकता है। आज कोरोना एक वास्तविकता है। दुनिया के सारे ही समझदार लोग इससे संघर्ष को अनिवार्य समझते हैं। ज़ायोनिज्म भी एक खतरनाक वायरस है जो ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रह पाएगा। इस क्षेत्र के युवाओं के साहस, ईमान और इज्जत की वजह से वो तबाह और नष्ट होकर रह जाएगा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनेई किसी एक जंग में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के संघर्ष की कहानियों की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था कि आंतरिक इच्छाओं से संघर्ष दुश्मन से संघर्ष से भी बड़ा काम है। इस प्रकार से वो आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी जंग से लौट रहे थे। उस जंग में उन्हें विजय हासिल हुई थी। मुसलमान ये सोचकर बहुत खुश थे कि उन्हें एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने के बाद सफलता मिली है। मुसलमानों से पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अभी आप लोग छोटे संघर्ष से वापस लौटे हैं और अब बड़े जिहाद का समय आ गया है। मुसलमानों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इतनी कठिनाइयों के साथ संघर्ष और जिहाद, इतनी दूर का सफ़र, मरुस्थल की भीषण गर्मी, दुश्मनों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद हम खैरियत से लौट आए और वो भी छोटा संघर्ष है, तो फिर बड़ा संघर्ष क्या होगा। इस पर रसूल खुदा ने उनसे कहा कि आंतरिक इच्छाओं से संघर्ष। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनेई कहते हैं कि आंतरिक इच्छाओं से संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष है। हम ईरानी राष्ट्र को आत्मा की शुद्धता के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अपने आप को हमें तैयार करना चाहिए, खुद को पाक करना चाहिए और पवित्र बनाना चाहिए। अपनी आत्मा को ईश्वर से परिचित करवाना चाहिए। ये संघर्ष और जिहाद हर विदित जिहाद और हर दुश्मन से बड़ा है। सारे ईश्वरीय दूत दुनिया में आए ताकि वो इंसानों को बनाएं, इंसान को उसकी अपनी आंतरिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाएं और उसे हर शैतानी बहकावे और आंतरिक दुश्मन से बचाए रखें। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरान ने अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर पश्चिमी देशों की आलोचना की है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के उप गृह मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए ईरान की मदद करने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और यूरोपीय देशों की ओर से अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल न किए जाने की कड़ी आलोचना की है। ईरान के उप गृह मंत्री सैयद मजीद मीर अहमदी ने शनिवार को तेहरान में बुल्गारिया के उप विदेश मंत्री वेलिसलावा पेट्रोवा से मुलाकात में अफगानिस्तान की हालिया स्थिति के बाद इस देश में शरणार्थियों की लहर की ओर संकेत करते हुए कहा कि ईरान में 50 लाख से अधिक अफगान पलायनकर्ता जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान ने मानवता प्रेमी कार्रवाई करते हुए तथा मानव अधिकारों के दम भरने वाले बहुत से देशों के विपरीत इन शरणार्थियों को स्वीकार किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान 40 साल से अधिक समय से अफगान पलायनकर्ताओं की मेजबानी कर रहा है। अफगानिस्तान के हालिया परिवर्तन इस बात का कारण बने कि बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों ने ईरान का रुख किया और इस्लामी गणतंत्र ईरान ने भी अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों की वजह से पैदा होने वाली आर्थिक समस्याओं के बावजूद तथा अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना ही दोनों हाथ खोलकर अपने अफगान भाइयों का स्वागत किया और उनकी आज तक भरपूर मेजबानी करता रहा है। अफगानिस्तान के एक पड़ोसी देश तथा इस देश के साथ लंबी सीमा रखने वाले देश के रूप में ईरान ने हमेशा अफगानिस्तान के हालात पर विशेष ध्यान दिया है और अफगानिस्तान में मौजूद कुछ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के विपरीत अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा की स्थापना को अपनी शांति और सुरक्षा के समान करार दिया है। अफगान शरणार्थी भी ईरानी जनता से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक निकटता की वजह से ईरान के विभिन्न शहरों और कस्बों में सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं से भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान चाहता है कि शरणार्थियों और पलायनकर्ताओं के संबंध में यूरोपीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो वचन दिए हैं उन पर वे अमल करें और तेहरान सरकार का हर तरह से समर्थन करने का ऐलान करें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
विश्व में गहराते खाद्य संकट का जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व में खाद्यान्न संकट इतना अधिक गहरा गया है कि अब वो एक गंभीर चिंता के विषय में बदल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के राजदूत ने यह कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का संकट पैदा हो गया है। वर्तमान समय में विश्व में लाखों लोगों के लिए खाद्य पदार्थों तक पहुंच बहुत कठिन हो गई है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन संकट ने पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट को बहुत ही गंभीर चरण तक पहुंचा दिया है। हालांकि खाद्य पदार्थों की कमी का संकट पिछले एक दशक से जारी है। इस संकट को हवा देने में जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और भू राजनीतिक संघर्षों की भूमिका रही है, किंतु यूक्रेन युद्ध के कारण इसकी स्थिति बहुत ही संवेदनशील हो गई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय संसार में 811 मिलियन लोग रात में भूखे सो रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 38 देशों के 44 मिलियन अर्थात 4 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं और ज्वार के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 18-30% की वृद्धि हो गई है। इन परिस्थितियों के कारण निर्धन देशों विशेषकर अफ्रीकी देशों में खाद्यान्न संकट बहुत अधिक गहरा गया है। वर्तमान समय में अफ्रीका में 346 मिलियन लोग पूरी तरह से भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। यूक्रेन और रूस विश्व में गेहूं निर्यात करने वाले 5 बड़े निर्यातकों में शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी से परिवहन बाधित हुआ है। इस प्रकार से कई बंदरगाहों से गेहूं का निर्यात रुक जाने, अशांति एवं पलायन के कारण बहुत सी जमीनों में गेहूं की बुआई न होने से भी खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अमरीकी अधिकारियों का प्रयास है कि वे विश्व में बढ़ते खाद्यान्न संकट का जिम्मेदार रूस को ठहराएं। हालांकि यूक्रेन युद्ध में अमरीकी हस्तक्षेप के कारण ये युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसी बीच यूक्रेन युद्ध की आड़ में अमरीका ने रूस के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाते हुए अपने घटकों से भी ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया है। रूस में अमरीका के राजदूत ने अपने एक साक्षात्कार में यह कहा है कि उनके देश के विरुद्ध अमरीका और पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अपने कामों के कारण अब अमरीका और पश्चिम को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, किंतु वे इसकी जिम्मेदारी रूस के गले ही डाल रहे हैं। बहरहाल वर्तमान समय में विश्व में खाद्य संकट के खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर ये प्रक्रिया नहीं रुकती है तो संसार में लाखों लोगों को भुखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति से अवगत करवा रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते हसन।
लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ने एक बार फिर नई दिल्ली से आह्वान किया है कि वो कश्मीर के हवाले से सही अप्रोच इख्तियार करें। दक्षिणी कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बार बार नई दिल्ली को यह समझाने का प्रयास किया कि ताकत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उनके अनुसार नई दिल्ली की प्रशासन जो भी दावे कर रही है उसका ज़मीनी स्तर से कोई मेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर्यटक आए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी यहाँ पर्यटक आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज़्म को शांति से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में लोगों के दिल जीतने हैं तो हम नई दिल्ली को चाहिए कि वो अपनी नीतियों में तब्दीली लाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसको लोकसभा संसद ने कबूल किया। मेरा ये मानना है कि इससे कश्मीरी लोगों के दिल जीते नहीं जाएंगे बल्कि उनके दिल में नफरत उभर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ खामोशी ज़रूर है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो खामोशी है वो कभी भी एक नए वातावरण में तब्दील हो सकती है, और मेरी उससे पहले ही नई दिल्ली से ये आह्वान और विनती है कि वो अपने अप्रोच में तब्दीली लाए। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एनी सेक्टर, जो तरक्की पिछले 2.5 वर्षों में हुई है वो एक इतिहास बनता जा रहा है और ये सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर और डायरेक्टर हेल्थ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी चीज़ें हमने लाए हैं उससे लोगों को राहत मिली है और अब अकाउंटेबिलिटी पैदा हुई है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
जैसा नाम बताती है रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की तारीख पे 184 देशों में काम करती है, और ये रोटरी क्लब आप बोलते हैं वो एक एक जगह के क्लब रहते हैं, जैसे कश्मीर में श्रीनगर में 2 क्लब है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हताहत कर दिया है। हत्या के कारण का तुरंत कुछ पता नहीं चल सका, परंतु पुलिस का कहना है कि इन हत्याओं के पीछे छापामारों का हाथ है, किंतु अभी तक किसी भी छापामार संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरान ईश्वर चमत्कार, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम आज कल।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 49वीं और 50वीं आयतों की तिलावत सुने।
قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
فرعون نے کہا تو ہے موسیٰ تم دونوں کا پالنہار کون ہے موسیٰ نے کہا ہمارا پالنہار وہ ہے جس نے ہر وستو کی رچنا کی پھر اس کا مارگ درشن کیا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی رہائی کی مانگ کی اور فرعون کو ایک ایشورواد کا نمنترن دیا۔ فرعون کی سب سے پہلی پرتکریا یہ تھی کہ اس نے پوچھا کہ تمہارا پالنہار کون ہے جس کی اور تم مجھے آمنترت کر رہے ہو، مجھے اس کے کوپ و دنڈ سے ڈرا رہے ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتر سنکشپت کنتو ٹھوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا پالنہار وہی ہے جس نے ہر وستو کی رچنا کی ہے اور سرشٹی میں ہر وستو کے لیے جو بھی آوشک تھا اسے پردان کیا ہے، وہی پرگتی ایوم پریپورنتا کے چرنوں میں سبھی کا مارگ درشن کرتا ہے۔ فرعون جیووں و وستوؤں کی رچنا کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اتہ حضرت موسیٰ کی بات کا اس کے پاس کوئی اتر نہیں تھا، کیونکہ جو فرعون اپنے ایشور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس نے سوئم اپنی بھی رچنا نہیں کی تھی، تو وہ انیہ جیووں اور وستوؤں کی رچنا کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا۔
البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایشور دوارا سبھی جیووں کی رچنا کے اترکت ان کے مارگ درشن کے وشے کی اور بھی سنکیت کیا کہ جو ایشور دوارا منشیہ کی پروتی میں رکھا گیا مارگ درشن ہے۔ اس مارگ درشن کے مادھیم سے ہر جیو کو اپنا جیون جاری رکھنے اور پرگتی و پریپورنتا کی اور بڑھایا جاتا ہے۔ گیہوں کا ایک دانہ کس پرکار گیہوں کی بالی میں پریورتت ہو جائے، پشو پکشی کس پرکار اپنے لیے گھر و گھونسلہ بنائیں، کیا کھائیں اور کس پرکار اپنی سنتان کا پالن پوشن کریں، یہ سب ایشور دوارا اپنی رچناؤں کی پرورتی میں رکھے گئے مارگ درشن کے کارن ہی ہے، اور اسی پرکار اس نے سنسار کو باقی رکھا ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ وستوؤں کی رچنا ایشور کی کرپا و اپکار ہے، اور وہ کسی بھی وستو کا نہ تو رینی تھا اور نہ ہے۔
برہمان پر پربھتو اس کا ادھیکار ہے جس نے سرشٹی کی رچنا کی ہے اور اسے پریپورنتا کے مارگ پر آگے بڑھایا ہے۔
سبھی وستوئیں ایشوری مارگ درشن کے انترگت ہیں، اور سرشٹی کے قانون ایشوری مارگ درشن کے چنہ ہیں۔
یا ملیک القلب یا ابن المصطفی القلب يا ابن المصطفى
آئیے اب سورہ طٰہٰ کی آیت سنکھیا 51 اور 52 کی تلاوت سنیں.
قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
فرعون نے کہا تو پھر ان جاتیوں کا کیا ہوگا جو پہلے تھیں؟ موسیٰ نے کہا اس کا گیان میرے پالنہار کے پاس ایک کتاب میں سرکشت ہے، میرا پالنہار نہ تو کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی کسی بات کو بھولتا ہے.
فرعون نے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اتر نہیں تھا ایک انیہ پرشن کیا تاکہ چرچا کو اس کے مارگ سے ہٹا دے. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یدی ویسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر ہمارے پوروجوں کا کیا ہوگا جو سب کے سب مورتی پوجک اور انیک ایشوروادی تھے، کیا وہ بھی دنڈ میں گرست ہوں گے؟ حضرت موسیٰ نے پچھلی جاتیوں کے بارے میں اپنی اور سے کوئی بھی فیصلہ کرنے اور ان سبھی کو کفر کے کارن نرک میں جانے والا بتانے کے استھان پر کہا کہ ان کا معاملہ ایشور کے ہاتھ میں ہے، ان کے سبھی کرموں کا لیکھا جوکھا سرکشت ہے اور ایشور اسی کے آدھار پر ان کا حساب کرے گا تتھا ایشور کے کارے میں کسی پرکار کی کوئی غلطی نہیں ہوتی.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں پوروجوں کے انجام اور ان کے سورگ یا نرک میں جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے ایشور کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ وہی لوگوں کے کرموں اور منودشا سے اوگت ہے تتھا وہ کسی پر اتیاچار نہیں کرتا.
سنسار کی ہر بات اور ہر کرم کا لیکھا جوکھا ایشور کے پاس سرکشت رہتا ہے، اتہ اس میں کسی بھی پرکار کی کمی یا غلطی نہیں ہوتی.
آئیے اب سورہ طٰہٰ کی آیت سنکھیا 53 اور 54 کی تلاوت سنیں.
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى.
وہ ایشور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دھرتی کو آرام ہیتو جھولا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آکاش سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے دوارا وبھن پرکار کے پیڑ پودوں کے جوڑے نکالے، ان میں سے تم سوئم بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ کہ نشچت روپ سے اس میں بدھیمانوں کے لیے نشانیاں ہیں.
قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے بیچ کچھ آیتوں میں سرشتی کی رچنا اور وستوؤں کے مارگ درشن میں ایشور کی شکتی کا الیکھ کرتے ہوئے اس کے کچھ ادھارن پرستت کرتا ہے. آرمبھ میں وہ کہتا ہے کہ دھرتی و آکاش کا ایک ہی یکتی سے سنچالن ہوتا ہے، ایک اور دھرتی میں منشیہ و انیہ جیووں کے لیے جیون کی سمبھاونا اتپن کی گئی ہے اور ان کے جیون کے باقی رہنے کے لیے وبھن مارگ بنائے گئے ہیں، اور دوسری اور آکاش سے پانی برسا کر دھرتی کو ہرا بھرا کیا جاتا ہے جس سے منشیہ اور انیہ پشو پکشیوں کے لیے بھوجن اپلبدھ ہوتا ہے.
یہ سبھی ایشور کی عصیم شکتی اور سبھی کے پالنہار ہونے کے اسپشٹ چن ہیں. البتہ کیول بدھی سے کام لینے والے ہی ان نشانیوں پر دھیان دیتے اور ان سے پاٹھ لیتے ہیں، کنتو انیہ لوگ ان کے سمبندھ میں نشچیتنا سے کام لے کر ان پر دھیان ہی نہیں دیتے.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ دھرتی منشی کی پرگتی و پریپورنتا کا مادھیم ہے اور اس کی سبھی آوشکتاؤں کی پورتی کرتی ہے.
منشی کا آہار پرتیکش یا پروکش روپ سے ونسپتیوں سے ہی پراپت ہوتا ہے اور ونسپتیوں کا جیون ورشا پر نربھر ہے. نشچت روپ سے ایشوری یکتی کے بنا یہ بات سمبھو نہیں ہو سکتی تھی.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تا
ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और रवि सैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता द्वारा नए ईरानी वर्ष पर दिए गए नारे रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में आशा है पसंद करेंगे।
दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी ईरानी नववर्ष यानी नौरोज के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने नारे के तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय चुना, जिसका उद्देश्य ये होता है कि अधिकारी बुनियादी तौर पर सरकार और फिर उसके बाद संसद और न्यायपालिका, इसी तरह जहाँ मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ हो वहाँ जनता उसी खास लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ती है। सर्वोच्च नेता द्वारा नारे के रूप में हर वर्ष दिया जाने वाले लक्ष्यों को अच्छी कामयाबी हासिल होती दिखाई दे रही है। सन 1400 में सर्वोच्च नेता द्वारा पैदावार समर्थन और रुकावटों के निवारण को विषय नारे के रूप में दिया गया था। अपेक्षाकृत रूप से अच्छे काम भी हुए जो अब भी जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे।
पिछले कुछ बरसों में सर्वोच्च नेता ने नववर्ष के नारे को बुनियादी तौर पर पैदावार को किसी शर्त या खासियत के साथ केंद्र में रखा है। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनेई इस बारे में कहते हैं कि पैदावार को केंद्र में रखने की वजह यह है कि पैदावार देश के आर्थिक मुश्किलों के हल की कुंजी है। पैदावार दरअसल देश के लिए आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं से बाहर निकालने का असली रास्ता है। यही कारण है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस साल का नारा जो है रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन दिया है।
कृषि क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि खेतीबाड़ी आर्थिक विकास और विस्तार का इंजन है। हम सभी जानते हैं कि अगर किसान फसलें पैदा नहीं करते और खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते तो हम क्या खाते। ये एक वाक्य हमें एहसास करवाता है कि किसान और खेती हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। कृषि गतिविधि आदमी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन से ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करती है तथा शरीर को बनाए रखने के लिए हवा और पानी के बाद भोजन ही सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो कि केवल कृषि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए कृषि गतिविधि आदमी की सभी गतिविधियों में से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। पेट में अगर खाना नहीं होता है तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर किसी का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास होना चाहिए और कृषि के विकास का अर्थ है कि देश का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार का सृजन।
किसी भी देश का स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सीधे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। कृषि एक अर्थव्यवस्था के बुनियादी स्तंभों में से एक स्थायी स्तंभ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक विकास पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि विकसित देशों में जहां अन्य बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं कृषि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दुनिया भर के देशों के आर्थिक विकास की प्रगति के इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि दुनिया के अधिकांश विकसित देशों ने आज कृषि को अपने आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचे के रूप में चुना है और इस क्षेत्र की प्रचुर क्षमताओं का उपयोग करके जहां अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है, वहीं कृषि के क्षेत्र में नए नए अवसरों को तलाश रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व, साथ ही इस क्षेत्र में इस्लामी गणतंत्र ईरान की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है कि जिसके बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अपने भाषण में सीधे तौर पर उल्लेख किया है। सर्वोच्च नेता कहते हैं, देश के अहम आर्थिक मुद्दों को पैदावार का विषय, राष्ट्रीय पैदावार का चलन और राष्ट्रीय पैदावार का विकास हल कर सकता है। पैदावार का स्वभाव यही है, इसलिए हमने पैदावार के विषय पर खास बल दिया है। इससे आर्थिक विकास भी बढ़ता है, रोजगार पैदा होता है, इन्फ्लेशन में कमी आती है, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ती है, आम हालात में भी बेहतरी आती है। इसके अलावा इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। इससे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ता है, देश की जनता के भीतर गरिमा का एहसास पैदा होता है। पैदावार इस तरह की अक्सीर है, अगर इंशाअल्लाह बेहतरीन रूप में अंजाम पाया जाए तो पैदावार इस तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसीलिए हमने इन वर्षों में पैदावार के विषय पर इतना जोर दिया है और जिसका असर भी हुआ है।
ईरान चार मौसमों वाला देश है और ये जलवायु विविधता, उत्पादन, निर्यात और रोजगार के मामले में देश की क्षमता को बढ़ाने में सहयोग देती है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों के रोपण के लिए ईरान की विशेषाधिकार प्राप्त भौगोलिक स्थिति और जलवायु विविधता, गांवों और उत्पादन केंद्रों में एक उपयुक्त श्रमबल की उपस्थिति ईरान के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे गेहूं, तिलहन, चुकंदर, कपास, दूध, मांस, मुर्गी और अंडे, नट, फलियां, मत्स्य उत्पादों, विभिन्न उद्यान उत्पादों आदि सहित पशुधन उद्योगों के उत्पादन में भारी निवेश किया है और कृषि क्षेत्र में आयात को काफी कम करने में कामयाब रहा है। उदाहरण के तौर पर इस्लामी गणतंत्र ईरान सालाना 14 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है और काफी हद तक इस रणनीतिक फसल की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा इस्लामी गणतंत्र ईरान पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों को कुछ कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। इस संबंध में मार्च वर्ष 2021 की शुरुआत से नवंबर के अंत तक ईरान से 5 मिलियन और 431,000 टन कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गया है, जिसका मूल्य देश के लिए 3 बिलियन और 340 मिलियन डॉलर आका गया है।
दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र के अधिकारियों का मानना है कि ईरान का कृषि निर्यात और उसकी विनिमय क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। कृषि क्षेत्र में निवेश के कारण आज इस्लामी गणतंत्र ईरान को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कम से कम समस्याओं का सामना है। ये विशेष रूप से ईरान के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकतम दबाव की नीति के बाद स्पष्ट था, क्योंकि कृषि क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक था जो प्रतिबंधों से कम प्रभावित था और अधिकांश क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद कृषि क्षेत्र में विकास जारी था और कोई नकारात्मक अनुभव नहीं था।
वर्ष 2020 में परियोजना और बजट के तत्कालीन प्रमुख मोहम्मद बाकिर नौबख्त का कहना है कि पिछले एक से दो साल में तेल समेत देश की आर्थिक वृद्धि नकारात्मक थी, लेकिन पिछले साल बिना तेल के देश की आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रही है। मोहम्मद बाकिर नौबख्त कहते हैं कि ये कृषि क्षेत्र में 7% हुई वृद्धि के कारण था। ये वृद्धि दर्शाती है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में छलांग लगाने की प्रतिभा और क्षमता हमारे भीतर पाई जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जो 17.7% रोजगार और 5.9% गैर तेल निर्यात के साथ देश की माइक्रो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ईरान में ऐसी संभावनाएं पाई जाती हैं जो इस देश को कृषि केंद्र में बदल दे? तो इसके जवाब में जानकारों का कहना है कि ऐसी उपेक्षित क्षमताएं मौजूद हैं जो ईरान को कृषि हब में बदल सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ईरान के कृषि क्षेत्र में बहुत सी अनदेखी क्षमताएं हैं। यदि इस क्षेत्र पर अधिक गंभीरता से ध्यान दिया जाता तो इस्लामी गणतंत्र ईरान कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों में नंबर एक का स्थान हासिल कर सकता है, जबकि कृषि आयात पर अपनी निर्भरता को और कम कर सकता है।
कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में कृषि क्षेत्र में कई उपेक्षित क्षमताएं हैं जो या तो उत्पादन चक्र में शामिल नहीं हैं या अपनी न्यूनतम उत्पादन क्षमता पर हैं। उदाहरण के तौर पर खुले पानी और समुद्र में मत्स्य पालन की उत्पादन क्षमता ईरान की उपेक्षित कृषि क्षमताओं में से एक है। छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन के लिए देश के दक्षिणी और उत्तरी तटों के एक विस्तृत क्षेत्र का उपयोग और अन्य जलीय प्रजातियां जो गर्म और नमकीन पानी में रह सकती हैं इन उपेक्षित क्षमताओं में से हैं। कृषि जिहाद मंत्रालय के तत्कालीन प्रमुख अब्बास केशावर्स का कहना है कि देश की उपेक्षित ऐतिहासिक क्षमता बारिश के पानी को नज़रअंदाज करना है। अब्बास केशावर्स कहते हैं कि ईरान में 10 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि है। पिछले 4 वर्षों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन जमीनों पर 5 रणनीतिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। वो कहते हैं कि कुल मिलाकर इन भूमियों में 2.5 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त गेहूं, 1 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त जौ, 2.5 मिलियन टन से अधिक चारा फसलें और 800,000 टन से अधिक तिलहन का उत्पादन किया जा सकता है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो हम आशा करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे। अगली सभा तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज। Oh,